नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। केंद्र सरकार ने आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर जीएसटी घटाया। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। जीएसटी परिषद ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य करने पर सहमति जताई। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आपदा विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में हेली सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मौसम में सुधार होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आम जनता और मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने जीएसटी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए करों के बोझ को कम कर दिया है। नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल दो श्रेणियों में कर दिया गया है और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए व्यापक सुधार किए गए हैं।
But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit.
स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ी राहत देते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कर को शून्य कर दिया गया है।
हेल्थ रिलेटेड आइटम्स 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिंस एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 टू 0 फ्रॉम 5 टू 0 एंड 3 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेयर डिजीजेस एंड अदर सीवियर क्रॉनिक डिजीजेस। There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28.
वित्त मंत्री ने कहा कि ये सभी बदलाव 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों की सहमति से लिए गए इन निर्णयों से आम आदमी, किसान, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। देहरादून स्थित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों की समस्याओं पर बैठक आयोजित हुई। इसमें पोर्टल पर चिकित्सकीय दरों में विसंगति, निरस्त व गलत चिकित्सा दावे, लंबित देयकों के भुगतान और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। प्राधिकरण स्तर की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ह्याकी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने की। उन्होंने अस्पतालों से कहा कि आयुष्मान और राज्य स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के बेड उपलब्ध कराएं और समन्वय के साथ कार्य करें। अस्पतालों ने इस पर सहमति जताई। अरविंद सिंह ह्याकी ने कहा कि प्राधिकरण स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि लाभार्थियों को जानबूझकर परेशान करने या बेड न देने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पतालों से योजना की बेहतरी के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की अपील की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने चालंग गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 500 करोड़ रुपए के घोटालों की खबरों को भ्रामक और असत्य बताया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, इसलिए वित्तीय अनियमितता का सवाल ही नहीं उठता। उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से ग्राम चालंग में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत नहीं की गई है और इस संबंध में फैलाई जा रही खबरें तथ्यहीन हैं। सचिव मोहन सिंह बनिया ने भी इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये जनमानस को गुमराह करने वाली खबरें हैं। प्राधिकरण ने बताया कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच निजी भूस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी। ये मात्र एक निजी हाउसिंग मॉडल था जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना का रूप देने का प्रयास किया गया। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और सही जानकारी के लिए सीधे प्राधिकरण से संपर्क करें।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में श्री जोशी ने उत्तरकाशी के धराली और आसपास के क्षेत्रों में शीघ्र अस्थायी स्टोरेज निर्माण कराने के साथ किसानों को समय पर फल, सब्जियों के बीज, मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने और एप्पल मिशन के तहत सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क मार्ग समय पर नहीं खुल पाया तो सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए एमएसपी का वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार रखा जाए। इसके अलावा सेब के ए और बी ग्रेड फलों की एमएसपी का प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार करने को कहा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीआरएफ दल के प्रशिक्षण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की शेष धनराशि वर्तमान वर्ष में खर्च करने, चंपावत और पौड़ी जिलों को राहत बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दूसरी किश्त जारी करने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष सहित आपदा प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान सहायता तुरंत वितरित की जाए और लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। आपदा विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में हेली सेवाओं के लिए एसओपी जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री वर्धन ने देहरादून में रिस्पना नदी के चैनलाइजेशन और निकासी कार्यों के लिए सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग को संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने को कहा। साथ ही प्रदेश की बड़ी नदियों का अध्ययन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना बनाने और बाढ़ प्रभावित बस्तियों के लिए सुरक्षा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मौसम में सुधार होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है। साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत बचाव और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार जारी हैं। ग्राम पंचायत सियूर के बकोला, सियूर और बरसाल तोक में 60 प्रभावित परिवारों को राशन किट और 5 सोलर लाइटें वितरित की गईं। ग्राम प्रधान को आकस्मिक जरूरत के लिए 2 बड़े टेंट भी उपलब्ध कराए गए। ताल जामण के थपौनी तोक में पेयजल आपूर्ति के लिए पीवीसी पाइप भेजे गए, जबकि खाट किमाणा क्षेत्र में जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं जखोली क्षेत्र में 2 सुरक्षित प्रसव कराए गए। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि हर प्रभावित परिवार तक राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्रमुखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर जीएसटी घटाया। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। जीएसटी परिषद ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को शून्य करने पर सहमति जताई। कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों के नुकसान का आकलन कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आपदा विभाग को आपातकालीन परिस्थितियों में हेली सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने मौसम में सुधार होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।